राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 4 अगस्त 1993 को प्रातः लगभग 8 बजे मुरली मनोहर धोरा भिनाशर में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 मन से वाणी से शरीर से और बर्ताव से भगवान समझो सबको। एक बात बड़ी बढ़िया है, सब में भगवान को समझने से किसी को कभी किंचित मात्र भी कष्ट नहीं देना। अगर इस बात को हम ठीक समझ रहे हैं और काम में ले आ रहे हैं इस बात को, तो जगत की बड़ी भारी सेवा हो जाएगी। बहुत भाई बहनों की यह जटी हुई बात है, किसी को हम दुख ना दें वाणी से शरीर से मन से बर्ताव से भाव से, किसी को भी कष्ट ना दें, तो कष्ट में दिया क्या हुआ? ऐसी बात नहीं है। कष्ट न देने से सेवा शुरू हो जाती है। आप करोगे तो सेवा ही करोगे और क्या करोगे? कष्ट न दोगे ऐसा विचार किया कि मेरे द्वारा किसी को किसी प्राणी को भी किंचित मात्र भी कष्ट न हो ऐसा पक्का विचार करोगे तो दो अवस्था होगी आपकी। एक तो चुप अवस्था, कुछ चले जाए कोई ना सुगंध, और दूसरी हित करने की, क्यों दुख नहीं दोगे क्या सुख दोगे? सत्य स्वाभाविक सुख देने की वृत्ति पैदा होगी। तो दुख नहीं देना ये बात मामूली नहीं है। सत्संग करने वाले भाई बहनों से भी यह कहना है, कैसा खूब ख्याल रखे कि मेरे द्वारा किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा है, किसी के विक्षेप तो हो नहीं रहा है। हमारे को भी कोई कष्ट दे तो कष्ट हमें अच्छा नहीं लगता, तो दूसरों को हम कष्ट दे दूसरों को अच्छा लगेगा? अपने जो अच्छे नहीं लगता वो बर्ताव औरों के प्रति मत करो। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम, धर्म सर्वस्व समझो, पूरा का पूरा धर्म, और सुन करके धारण भी कर लो। हमारे प्रतिकूल बात पड़ती है वो बर्ताव हम औरों के प्रति न करें। आत्मना प्रतिकूला ने परेशान न समाचरित, प्रतिकूल ना करें, अनुकूल है जितना करो मत करो, बड़े मत करो, बल्कि प्रतिकूल ना करें। अनुकूल करने में बड़ा जोर पड़ता है, हम रुपये चाहते तो और रुपये दे दू, हम सुख चाहते सब सुख पहुंचा दू, हम सम्मान चाहते तो सबका ही सम्मान कर दू, हम प्रशंसा चाहते तो सबकी प्रशंसा कर दू, ये कठिन पड़ता है। दुख न देना ये सुगम पड़ता है, इस वास्ते आत्मा प्रतिकूल आदि परेशान न समाज करे, दूसरों का अहित हो, प्रतिकूल हो, अभी दुख हो, परिणाम में उसका उनको दुख हो, ऐसा न करे, सावधान रहे इस बात में, तो इससे अपना जीवन बड़ा शुद्ध हो जाएगा। स्वप्न को सुख पहुंचा दे ये मनुष्य के हाथ की बात नहीं है। एक आदमी सबको सुख पहुंचा दे ये ताकत नहीं है। महाराज ताकत वो सबके सब आदमी मिलकर एक आदमी को प्रसन्न कर ले ये भी नहीं है। तो एक सबको प्रसन्न कैसे करे सुनेगा? तो किसी को कष्ट ना दो, इसमें सबकी सेवा होगी। सेवा शुरू हो जाएगी, कष्ट न देने से सेवा शुरू हो जाएगी। सत्य स्वाभाविक उदासीन रहते हैं संत महात्मा वृद्ध त्यागी, सब लोग उनका आदर करते हैं, उनका दर्शन करके अपने को अहोभाग्यवान समझते हैं कि हमारा अहोभाग्य है। उनमें क्या है, रोटी भी जनता से लेते हैं, कपड़ा भी जनता से लेते हैं, अपना खर्च कुछ नहीं करते, कोई एक खर्च नहीं करते, परंतु भीतर है किसी को दुख न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो, सब आनंद फूले फले मौज में रहे, तो किसी को कष्ट न हो ये भाव बहुत बढ़िया है। ये भाव ठीक हो जाने पर क्या होगा, कहीं हिंदू मुसलमाना का दंगा हुआ और मुसलमाना ने हिंदू अधिक मार दिए, तो उसका असर कैसा पड़ा हमारे पर, और हिंदुओं ने मुसलमानों को ज्यादा मार दिया तो असर कैसा पड़ा, ऐसे अपने में तोड़ना चाहिए, देखना चाहिए। अगर मुसलमानों के मरने से हमारी प्रसन्नता होती है तो उसका हित नहीं चाहते हम, अहित चाहते हैं, तो पक्षपात आ गया हमारे भीतर। एक बात होगी दूसरी, भी न्याय युक्त किसका, न्याय किसने किया, अन्याय किसने किया, तो अन्याय भाई हिंदुओं के द्वारा भी होता है, मुसलमान द्वारा भी होता है। किसी अंश में ये कह दो कि पहले भी अन्याय करते हैं, कोई बात नहीं, तो वे दोषी हो गए, परंतु उनका बुरा चाहना, बुरा मानना, बुराई पर राजी होना, प्रसन्न होना, ये ठीक नहीं है। किसी के ऊपर नाराज होना, क्या हमारा क्या अधिकार है, हमारे को अधिकार मिला है ऐसा भगवान से, संत महात्माओं से, शास्त्रों से और विचार के द्वारा सबके ऊपर हमारा आधिपत्य रहे ऐसा है, तो ऐसा न मानकर कह सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, भाई लड़ाई मत करो, अन्याय करे उनको फिर तुम अन्याय मत करो, ये साधुता की दृष्टि है। साधुता की दृष्टि में कायरता न आ जाए, अन्याय पूर्व कोई अपना धन हरण करे, हमारी बहन बेटी पर दृष्टि करे, तो उस समय में हम अपनी रक्षा करें। और यहां तक शास्त्र में आता है कि अराजकता हो गई, राज कोई सुनवाई नहीं करता, उस समय में ब्राह्मण क्षत्रिय वेद शूद्र सबका क्षात्र धर्म होता है, क्षत्रिय जैसे रक्षा करता है वो धर्म होता है सबका, तो धर्म समझ करके अनुष्ठान करे, विरोध को वैद करके नहीं, बस में भीतर में वैर रखना है, द्वेष रखना है, ये चीज खराब है। इंद्रिय त्याग से राग द्वेष व्यवस्थित हो, तयोर न भस्मागत तो यस्य परिपंथिनो, तो राग देश के वशीभूत और काम न करे, विचार पूर्वक करो, काम कोई हर्ज नहीं है। पांडवों ने भी युद्ध किया है, परंतु राज्य मिलने पर वनवास में चले गए, बद्रीनाथ चले गए, वीर यात्रा गई, अपने राज्य के लिए ऐसा नहीं है। तेरह तैसी दिखती है, प्रत्यक्ष दिखती है, परंतु कोई राज्य भोगा वो ये बात नहीं है। वीर संन्यास होता है, चौपसाब उत्तरखंड के पृथ्वी की प्रदक्षिणा करी, ऐसे प्रदक्षिणा करके उत्तर की तरफ चल दिए। तो वीर संन्यास वो होता है कि चलते ही रहे, न खाना है, न पीना है, न बैठना है, न सोना है, चलते ही चलते 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 शरीर गिर जाए, गिर गया वही गिर गया, बस दूसरे से चले। दुर्योधन के तो मन में राज्य की थी, राज्य मिला तो सुख भोगा भी, उसने बहुत कई तरह का रंगा किया, परंतु पांडव ने नहीं किया। दोनों का युद्ध एक ही है, पर भाव से भेद है। भेद होने का असर आज भी दुनिया पर है। दुर्योधन की करतूत को लोग खराब समझते, थूकते हैं, और युधिष्ठिर महाराज को आदर की दृष्टि से देखते हैं। शास्त्र में भी आता है, धर्मो विवद्भति युधिष्ठिर की चमेना, युधिष्ठिर का कीर्तन करने से धर्म बढ़ता है। धर्मराज थे, वो दुख नहीं देना चाहते थे, कई जगह दुर्योधन नाम देकर सुयोधन कहते थे, ऐसी उसकी बात आती है। तो अपना भाव निर्मल रहे तो हमारी लोक में और परलोक में सदगति होगी। जैसे बाहर बाजार में भी भाव से चीज मिलती है, वो बाजार बाजार के अधीन भाव है, तो हमारा भाव यहां अच्छा रहेगा तो हमारी उन्नति होगी, ठीक होगा ही। भाव हाथ लगे तो धनी बन जाता आदमी, इस तरह से भाव शुद्ध रहे। भाव नीर निर्मल सदा परमल भव सिंधु पार, राम दास जन रम रहा दया अखर सुसार। भाव नीर निर्मल सदा, अरे परमल भव सिंधु पार, सुगंधि उसकी बहुत दूर तक जाती है, कैसी बढ़िया चीज है। तो ऐसे भाई बहनों को चाहिए भाव निर्मल रहे, और वो शुरू करना चाहिए घर में से। ये जो घर है और ये सत्संग एका है, ये पाठशाला है, ये पाठशाला पढ़ने का स्थान है, ये विद्यालय है, जिसमें ग्रस्त वो खास बड़ी पाठशाला है, उसमें ये सीखना है। तो घर में ही ऐसी बात करनी है कि सबको सुख पहुंचे। काम धंधा करने में कष्ट पाने में तो मैं आगे जाऊं, आराम दूसरों को मिले, ऐसे भाव से बर्ताव करे, आपस में खटपट मिल जाती है, लड़ाई मिल जाती है, शांति हो जाती है, कैसी बढ़िया बात है। तो ऐसा शुद्ध आचरण करें हम तो हमारी दोनों बातें होती है। देखो पढ़ाई करते हैं ना, पढ़ाई करने पर फिर परीक्षा का दिन आता है, परीक्षा के दिनों में हम परीक्षा देते हैं तो उसे नतीजा निकलता भी पास हुए फेल हुए। तो घर में रहते हुए तो करते हो पढ़ाई, और वो पढ़ाई सीखते हैं सत्संग में, और सत्संग में सीख कर जाते हो तो वहां पढ़ाई करते हुए परीक्षा वहां होती है। काम पड़े मैंने क्या पता भाई, काम पड़े मैंने पता नहीं लगता, असली काम पड़ता है ना तब पता लगता है। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, दूसरों को कहने के लिए तो हम बड़े कुशल हो जाते हैं, पर उपदेश बेलाया शिष्टा सर्वे भवन्ति, परंतु विस्मृति शिष्टत्वम स्वकार्य समुपस्थित, अपना काम आता है वहां पर हम वो विद्या भूल जाते हैं, इसमें याद रखना है अपने काम पर सब वहां खड़ा उतरना है, वो है परीक्षा हमारे जीवन की, सत्संग की भी। सत्संग करने पर मनुष्य में नम्रता सरलता दैवी संपत्ति गुण आना चाहिए स्वाभाविक। तो देव परमात्मा का है तो परमात्मा में जितना सम्मुख होगा परमात्मा का चिंतन होगा उतने उतने सदगुण सदाचार स्वतः आ जाएगी स्वाभाविक। दैवी संपत्ति मोक्ष आय बताया ना, तो देव नाम है परमात्मा और परमात्मा की प्राप्ति के साधन है उसको देवी संपत्ति, तो देवी संपत्ति विमोक्ष आयो। तो परमात्मा के गुण आने से जैसे परमात्मा सूर्यम सर्वभूतानाम ज्ञाता माम शांति मिथति गीता में आया है, भगवान कहते हैं मेरे को सूर्य मिल गए तो शांति की प्राप्ति हो जाएगी संपूर्ण प्राणियों का सूर्य। जैसे भगवान के लिए आया है ऐसे भक्तों के लिए आया है। सूर्य सर्वदेही नाम मात्र देही धारेगी सूर्य उदय अगाध सर्वर शांत सूर्य सर्वदेही नाम सत्युदिनी कोई है नहीं शांत है और सर्वदेही नाम सूर्य। भीतर से भाव दूसरों का अच्छा चाहिए। एक आया लोग प्रिवाक्य प्रधान है ना सर्वे तुष्यंत जंतु तस्मात प्रियमेव वक्तव्य बचने का भी नहीं दूसरा मीठा बोलना नैव चलन पर हो गए पांचों चंगा नानक हरिभज हाथों गए। प्रिय वाक्य प्रधान है ना सर्वे तुष्यंत जंतु कुत्ते को भी पुरस्कार प्यारा बोले वो राजी हो जाता है। जंतु से राजी होता है मनुष्य भी राजी होता है। तो जस्मात प्रेम ही प्यारा ही बोलो भाई बचने का दर देता इसमें कौन सा चक्का लगे खर्च तो होता ही नहीं। तो मधुर बोलने का स्वभाव बनाना चाहिए। जहां जहां मृत भाषी मधुर भाषी होता है उसका आदर होता है स्वाभाविक। आदर के लिए नहीं है मीठा बोलना कर्तव्य। जैसे एक समय वनवास में द्रौपदी ने जिससे से कह दिया कि आप धर्म का पालन करते हैं धर्म को छोड़कर थोड़ा भी इधर उधर पैर नहीं रखते वे तो बन बन भटकते हैं दुख पा रहे हैं। और दुर्योधन धर्म कर्मी बात विचार ही नहीं करता वो तो जैसे स्वार्थ की सिद्धि हो झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी जो कुछ कर दिया जाए जिससे अपना मतलब सिद्ध हो जाए ऐसा करता है वो जो मौज कर रहा है राज्य कर रहा है। आप धर्म पालन करने वाले कष्ट उठा रहे हो कोई धर्म है कोई ईश्वर है न्याय है कि नहीं क्या बात है ये कैसा होता है उल्टा उल्टा मसीहा। ऐसे द्रौपदी ने जब कहा तो युधिष्ठिर महाराज बड़े शांति से बोले कि मैं जो धर्म का पालन करता हूं क्या सुख के लिए आराम के लिए करता हूं। जो आराम के लिए धर्म पालन करता है सुख के लिए धर्म पालन करता है वो धर्म के तत्व को नहीं जानता जानते ही नहीं। सुख के लिए तो सभी चीज है कुत्ता है गधा है ऊंट है पैसा है सुअर है ये भी अपने सुख के लिए चेष्टा करते ही है। फिर अपने सुख के लिए चेष्टा करना कौन बड़ी बात है। धर्म का पालन करना मनुष्यता है। मनुष्य शरीर मिला है जिसकी महिमा शास्त्रों में आती है दुर्लभ हो मानुष हो दी है लब्धा सुदुर्लभ निदम ये मानुष्यम बड़ा दुर्लभ बड़ी महिमा। देवता भी इसकी प्रशंसा करते हैं। तो मनुष्य का कर्तव्य है कि जिसमें मनुष्यता होनी चाहिए। मनुष्यता के लिए दो बात खास है एक तो भगवान का भजन करना एक दूसरों को सुख पहुंचाना। अब मनुष्यता होगी अब दूसरों को दुख पहुंचाता है तो मनुष्यता नहीं है। सिंह है सांप है बहुत से दूसरों को दुख देने वाले ऐसा ही एक वो जंतु है। और भगवान को याद नहीं करता तो मनुष्य ने क्यों धारण किया। इस शरीर का फल नहीं कर कर बोल विषय है भाई, तो भगवान का भजन करना, भगवान को याद करना और अपने तन मन वचन धन विद्या बुद्धि आदि से उपकार करना। उपकार न करो तो कोई परवाह नहीं, अपकार तो करना ही नहीं है। दर्द दे रहे हो या जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, ये सावधान मौका है सज्जनो। ये दिन निकल जाएंगे, आज दिन रंग जैसी उम्र बीत गई वो बीत ही गई, अब अच्छा किया मंद किया वो तो आपके हाथ की बात है, परंतु शरीर उम्र तो बीत गई बिना हाथ की भी, चाहते ही नहीं वो मौत का दिन नजीक आ रहा है। और वो कितनी विचित्र बात है, बहुत सा समय चला गया है। इस समय में जिन लोगों ने भजन स्मरण किया है, आध्यात्मिक मार्ग में लगे हैं, उनमें विलक्षणता आई है प्रत्यक्ष। जितना थोड़ा भी कोई करता है, सत्संग करता है, सदविचार रखता है, अच्छा बर्ताव करता है, उसके हृदय में भी शांति है, दूसरे लोग भी आदर की दृष्टि से देखते हैं। तो भाई सदगुण सदाचारों के पालन करने से सबके लाभ होता है, और दोनों इस लोक और परलोक में भी, यहाँ जीते भी सुख पाएंगे, परलोक में भी आनंद में रहेंगे। उम्र भी बढ़ती है, दुख देने से, दुख की भावना करने से उम्र खत्म होती है, दूसरे का अहिताने से विश्वास तेजी से चलता है, चोरी आदि कुकर्म करता है तो स्वास्थ्य जल्दी जल्दी चलता है, तो उम्र खत्म होती है, और किसी को दुख नहीं मिले, शांति रहती है, आनंद रहता है। कैसी मौज की बात है, चाह गई चिंता मिट्टी बनवा भी बनवा, और चाहना के साथ धन मिलना हाथ की बात नहीं है, ये भी एक मार्मिक बात है। धन संपत्ति वैभव मान बढ़ाई आराम, ये चाहना के साथ संबंध नहीं रखते हैं। लौकिक जो लाभ होता है, रुपये मिलते हैं, इनका और अपनी चाहना का संबंध नहीं है। चाहना करने पर भी धन नहीं आता, और चाहना करने पर आ भी जाता है, न चाहने पर भी आ जाता है, और न चाहने पर भी नहीं आता है, चारों बातें। चाहना करने पर धन हो जाता है, चाहना करने पर धन नहीं भी होता, और निर्भरता न चाहने पर भी आ जाती है, और चाहता तो कोई है ही नहीं। तो ये विधान के अधीन है, हमारी चाहना के अधीन नहीं है। भगवत भजन सत्संग स्वाध्याय हमारी चाहने का अधीन है। ये नया काम करना चाहते हो गया, कई लोग कहते सत्संग कर दो क्या हाथ आया तुम्हें क्या मिला, तो कहना चाहिए सत्संग करते हो तुम भी मानते हो, हमें सत्संग हुआ हमारे कि सत्संग से क्या फायदा, कि सत्संग हुआ ही फायदा। अब परंपरा कहीं कहीं अटको गई, तुम नाम जप से क्या फायदा हुआ, नाम जप हुआ हमारा, आप नहीं करते आपने नहीं हुआ, हम जप करते हमारे हुआ। तो हम अच्छा काम करते हैं वो अच्छा काम होता है, अच्छे काम को अच्छा ही कहेंगे। जो भगवान है, संत महात्मा है, शास्त्र है, धर्म है, ये उनका आदर ही करेंगे, उसमें हमारी वास्तव उन्नति होगी। इस वास्ते अच्छा काम है वो करना। गीता ने यही तो कहा कि कर्मण्य वाधिकार से माँ फलेश कदाचन, अच्छा काम करने के अधिकार है, पर फल मिल जाए ये कभी नहीं। ये फल का संबंध मत जोड़ो, कर्तव्य समझ कर करो, भगवान की आज्ञा समझ कर करो, संत महात्माओं की आज्ञा समझ कर करो, माता पिता आदि जो सूर्य है उनकी आज्ञा से करो। लाभ होगा ऐसा करना बढ़िया चीज नहीं है, और दूसरों की हानि करना बहुत ही घटिया खराब चीज है। तो हमारे इच्छा के अधीन फल प्राप्ति नहीं है, यह विधान के अधीन है। भगवान का विधान होगा तो मिल जाएगा भाई, ये बात मार्मिक है, समझ रहे। बहुत भाई बहनों ने क्यों ने कुछ समझ रखा है कि हम पाप करते हैं इस वास्ते धन हो गया, झूठ कपट करते हैं, इनकम टैक्स की, सेल्स टैक्स की चोरी करते हैं, उसे धन हो गया। ऐसा धन नहीं होता, चोरी करके हो गया। कैसे डाका डालने से हो जाता है, जेब कतरने से हो जाता है, पर वो ठहरता नहीं है। अगर आना वाला वो आएगा। अन्यायो पार्जितम वित्तम दस वर्षाणि तिष्ठति, शास्त्र जैसा लेख आता है अन्याय पूर्वक जो कमाया हुआ धन है वो दस वर्षों तक रहता, ज्यादा ज्यादा दस वर्ष रहता ही या नहीं। प्राप्त एकादश एक वर्ष से समूलन जमीन क्षति, मूल से ग्रस्त हो जाता है। पहले जमाने में धनी और राजा पीढ़ियों तक रहते थे, धनी आदमी रहते थे, राजा रहते थे। अब देखो कहाँ है, धर्मात्मा होते थे, अपने कर्तव्य का पालन करते थे, दूसरों को सुख पहुंचाना है ये उनका नियम होता था। जितने जितने बड़े हुए हैं, राजा महाराजा हुए हैं, उनके सदा ही मन में रहती उपकार कर रहे, पद मिला है उसके द्वारा दूसरों को सुख पहुंचे, ऐसा भाव रहता था, तथा का पालन करता था। दिलीप के और सिंह के संवाद में ऐसा बात आती है, राज्य प्राणी क्षत्रिय कहलाते हैं, क्षत्रा दुख से रक्षा करे उसका नाम क्षत्रिय। महाराज दिलीप के संतान नहीं था, स्वर्ग लोक से आए, जल्दी जल्दी आवश्यकता से जल्दी थी तो जल्दी आ रहे थे, तो बीच में गौ बैठी, गौ को काम धेनु से नमस्कार नहीं किया, इसलिए तुम जाते हो तुम्हारा संतान नहीं होगा। तो संतान नहीं हुआ महाराज मिली, तो फिर वशिष्ठ जी महाराज पूछा, ये पीढ़ियों तक वशिष्ठ जी गुरु रख रहा है, बोल पीढ़ियों तक। तो उन्होंने कहा, भाई गौ का अपराध हुआ है, तुम सेवा करो गाय की। तो वे नंदनी गाय की सेवा कर, नंदनी कामधेव की बछड़े थी, महाराज वशिष्ठ रह जा रहे थे, उसी सेवा करो। तो राजा और रानी कोई नौकर साथ में नहीं रह गए, राजा रानी दो ही, महाराज दिलीप से उसकी भार्या सुदक्षिणा, तो दोनों सेवा में लग गए। तो रात्रि में गौ जब आ जाती तो दीपक करती, वह स्थान साफ कर देती, रात पदे पर नया बिछा देती, ऐसे वो काम तो महारानी करती। और वहां से महारानी जब पूजन कर दे गाय का, कुमकुम देकर पुष्पमाला चढ़ा दे, तब वो मृतंगाने चढ़ाने के लिए ले जाते थे। तो चढ़ाने के लिए गौ स्वच्छंद रूप से जाती थी, उसको मना नहीं किसी तरफ से, उपास में ही रहते थे हरदम उसकी सेवा में। सुरस्तता मुत्तर प्रयात निषेध से मासन बंद धीर जला निलासी धर्मा दानाम छाये वाम भूप कालिदास ने लिखा है। गाय चले तो चलते थे, गाय बैठे बाद बैठते थे, और वह बैठे जब बैठने के चलते चलते छाया की तरह, जैसे छाया बैठे तो छाया बैठ जाती है, चल के छाया लंबी हो जाती है, वो भी चलती है। जब गाय जल पी ले तब जल पीता था, गाय चलती तो अब नहीं करता था, छाया की तरह ऐसे छाया की तरह सेवा करते करते 21 दिन बीत गए। सप्तभ्यति उस त्रिगुणानि तस्य दिनानि दीनो धरणोत्तस्य सप्त त्रिगुणानि सात 21, ऐसे सेवा करते करते 21 दिन बीत गए। तो नंदनी जी वो काम थे न थी, वो कोई मामूली थोड़ी थी, उसने देखा कि ये सेवा कैसे करता है, तो उसकी परीक्षा ली गई। तो उसने नंदनी गौ माता ने परीक्षा ली, वो गंगा जी किनारे चलती चलती, तो उसने नंदिनी गौ माता ने परीक्षा ली। वो गंगा जी किनारे चलती चलती गुफा में चली गई, गुफा है एक पास। तो वो गंगा जी के किनारे पर धूप बड़ी अच्छी थी, वो चलती चलती गुफा में चली गई। राजा उस समय पास में रहते रहते देखने लगे, पर्वत की बड़ी सुंदर शोभा, भिक्षावली लतार खूब लगे हुए, सुंदर झरना झर रहे, ऐसे वो राजा देखने लगे। उस समय में गुफा में से सिंह निकला और गाय पर आक्रमण किया। वो गाय गोरी थी, गोरी गाय अपना है बालकों का उत्साह लिया, जैसे गोरी गाय दिया हुआ, तो गोरी गाय थी और सिंह था सफेद, बिल्डिंग पे होता तो सफेद भी सिंह होता है। वो हमने उसमें आकलन किया तो उसने देखा है जैसे पर्वत की उद्धुतरा पर फूला हुआ वृक्ष हो, इससे वो सफेद वो लिया तो गाय की आवाज हुई, तो देखा देखा तो सिंह उस पर झपट रहा, तो उस धनुष को तिराया हुआ था ही, ऐसे तरकश में से तीर निकालने लगा के मारूंगे। तो महाराज वो यू हाथ क्यों गई, ये तो हाथ में ऐसा रह गया, वो हाथ में सही रह गया। चित्कार पिता रंभ एवा बतस्ते, जैसे चित्र में लिख दे तो वैसे ही रहता वो बोल रहे, ऐसे चित्र की तरह खड़ा रह गया। ऐसे बड़ा हास्य लगा, वो क्या कह रहा है, हाथ नहीं चलता है, ससुर नहीं चलता है। तब सिंह बोला हंस करके, तुम यो चाहता है कि मेरा ससुर चलता नहीं, कैसा चले तो मेरे को कुछ नहीं हो सकता, तुम जानता है, देख मेरे बात बताऊ तेरे को मेरी बात। अमुम पूरा पर श्री देव धारुम पुत्री कृतो सौ वृषभद्र देना यो हे मकुंभ स्तन निश्चदानम स्कंद से मातु पैसा ग्रसज्ञ। अमुम पूरा पर श्री देवता सामने देवदारू का वृक्ष खड़ा है, ये देवदारू का पक्ष वृक्ष है, भगवान शंकर ने बेटे की तरह माना है इसको। तो घूमते आए पार्वती ने देखा तो बमेले हाथों ने कोई खाज करी, उसने उनकी त्वचा उभर के ही छाल उतर गई। तो जैसे स्कंद के घाव हो जा दुख हुआ, ऐसे माँ को दुख हुआ पार्वती को, और पार्वती अपने दूध गिराया, उसको दूध गिराया। ये देवदारू है, तो जिस दिन ऐसा हुआ तो न कौन कुंभोदरम नाम निकुंभ मित्रम, निकुंभ का मित्र कुंभोदर मेरा नाम है, तो मैं सदा ही शिव जी के पास रहता हूँ। वे नंदीश्वर पर चढ़ते हैं तो मेरे पर पैर रख करके फिर चढ़ते हैं, तो भगवान के चरणों से मेरा पीठ मेरा सही पवित्र हुआ हुआ है। प्रयोग तुम आप शस्त्र में जो विशाषा तो शस्त्र का प्रयोग भी कर देगा तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरे ऊपर जमराज की भी ताकत नहीं है जो कभी विश्व देख सके। इस बार तुम चलता है, मेरा शस्त्र चलता नहीं तो दल क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता था। इस बार जैसा तुम निवर्तस्व विहाय लज्जा गुरु भगवान दल से बनती, तुमने गुरु की भक्ति बढ़ा दी, तुम आ गए गाय को चलाया सब ठीक हुआ, अब तुम जाओ और गुरु जी के पास चले जाओ। सिंह ने कहा कि ये बात कैसे हो सकती है, निश्चित पुरस्कार गुरु बंधन माहिता ने उन अग्निहोत्री मसार कुशील जी का धन सामने नष्ट होता और मैं कैसे देख सकता हूँ, उसके पालन करने के लिए आया हूं। तो कहते हैं मेरे को तू जानता है, कई दिनों से भूखा हूं, आज पारना करूंगा, गाय को खा करके आज पारना करना मेरे व्रत उपवास कर पारना करे, इस बार से तुम जाओ, ये तो मेरा भोजन है। तो दिलीप ने कहा कि तेरे को भोजन करना है तो मेरे को खा ले, परंतु गाय को छोड़ दे, बड़ा ऐसा है। अजगर के बोला, बुजार मूढ़ा प्रतिपास में तुम तो बड़ा मूर्ख देखता है। एकात पत्रम जया, एकात पत्रम जगत प्रभुत्व नवम कांत में दम पुस्तक अल्प स्नेह और बहु हाथ में चंद विचार मूढ़ा परिवार में अच्छी तेरी अवस्था है, राज्य है और गऊ की रक्षा के लिए अपने प्राण देता है। मौत मूर्ख है तू, मरेगा एक एक गाय स्वस्थ प्रति हो सारे कारण से एक गाय बस जाएगी और जीता रहेगा तो प्रजा प्रजानाथ पिदेवपासी प्रजानाथ भोग के पुत्रों की सहायता करेगी, उस प्रजा का पालन करेगा तो कितना लाभ होगा उधर। अरे यदि एक गाय बचेगी तो विचार तो क्या कर रहा है। दिलीप ने कहा ये मैं नहीं मानूंगा, गाय को सुना मेरा धर्म है तो वहां का अक्षतात्राय क्षत्रिय क्षत्रिय राम उसका है, जो क्षतनाम दुख है उससे रक्षा करे तो क्षत्रिय होता है। अरे मेरे सामने गाय मार मर जाए दुख नहीं करे, इनको बचा नहीं सकूं तो प्राणी उपक्रोश मलिए मरेगी बात, बड़ी निंदा होती है हमारी क्षत्रिय होकर के क्या किया, सामने गाय मारी गई, ये कभी नहीं होगा। तुम मेरा पालना है तो पालना तुम पालना कर लो, अपने शरीर कह दिया, बहुत कुछ संवाद हुआ उसमें। अंत में यही बात कही है कि जो मित्र होते हैं संबंध माँ भाषण पूर्व माँ और वरानते, इस वन में तुम्हारे हमारे बहुत बातें हुई है, श्रेष्ठ पुरुषों की बातचीत आत्म हो जाती है तो मित्रता हो जाती है। अब तेरे मेरे इतना संवाद हुआ, इतनी बातें हुई, तू मेरा मित्र है तो मेरे मित्र की बात तुम्हारे को माननी पड़ेगी, मित्र की बात नहीं मानेगा तब सिंह लाओ ठीक है ठीक है। मैंने स्वीकार करते ही हाथ खुल गए, मैंने मान रख दिया, कपड़े उतार लिए और सिंह के सामने अपने को ठहर दिया, मांस पिंड पे गए। दिलीप ने अपने शरीर को फेंका, वो जो ही गिरा है उसमें पुष्पों की वर्षा हुई, वो रक्षा करता है पुत्र की इच्छा से। अब आप मर जाएगा पुत्र किसके होगा, सकाम भाव से सेवा करने वाले की ये बात है, निष्काम भाव से कर उसका कहना ही क्या है, उसके पुत्र के भी हो गए दूसरे खा जाएगा। देवता ने कुछ वर्षा करी, उत्कृष्ट वर्ष मृतायमान अमृत के वचन बोली, नंदनी गौ बोली बेटा तू उठ गया, माया समुद्र भात परीक्षित, मैंने माया माया ऐसे तेरी परीक्षा ली है या देख कोई समझाएंगे। महाराज गुरु की कृपा से मेरे पर दमराज भी वार नहीं कर सकता, कौन मेरे पर कर सकता है, देख कुछ नहीं है। प्रीताश्रिते पुत्र बलम पुत्र, बेटा मैं राजी हो गई खुश हो गई, अब बोल क्या चाहता है, वरना दिमाग ने मेरे से तो कहा तुम्हें आप मेरे पर प्रसन्न हो तो मेरी सुदक्षिणा महारानी से मेरे से पुत्र हो जाए, वंशस्य कर्ता मनंत की सुदक्षिणायाम तन्यंग जायते, वंश करते रघु दुर्भ रघु रघु वंश कहलाता है, दिलीप वंश नहीं है, राम जी ने उतार दिया राम वंश नहीं है रघु वंश है, ऐसा मेरे पुत्र मेरा माँ वरदान में प्रिय गो तो बेटा दूध पी ले मेरा हो जाते बेटा हो जाएगा पी ले। दिलीप ने कहा ये माँ अन्य अन्याय होता है, आपने आज्ञा दे दी मैं लाता हूँ, आप वशिष्ठ के वो वशिष्ठ महाराज जी मैं चलाने के लिए आया हूँ और दूध मैं पी जाऊँ तो अन्याय होगा। आप क्षमा करें, आपकी आज्ञा मैं नहीं पालन करता हूँ, भाग रहता हूँ, मैं दूध नहीं पीऊंगा। आप घर पर पधारो, वहां बसरा पी ले, फिर महाराज वशिष्ठ जी का होम के लिए जो दूध नहीं घी आदि है वो वाले होम की सामग्री भी क्यों ना हो, और ये कहे तो दूध पी तो भी पी सकता हूँ। बहुत खुशी हुई, कितनी विचित्र बात है। तो दूसरे के दुख से रक्षा करना एक क्षत्रियों का धर्म है। उस धर्म के बीच में बोले अपन मर जा, कोई बात नहीं, बस नहीं चले नहीं चले। फिर देखा तो वशिष्ठ जी वही आश्रम में ही खड़े हैं, चट वही पड़ी काम भेज। फिर उसके रघु जन्मा है, वो रघुवंश चलता है आज, रघु का वंश है, क्योंकि वंश नष्ट हो गया था, गाय की कृपा से वंश चला है। तो गाय की रक्षा से अर्थ धर्म काम मोक्ष सब बात सिद्ध होती है। इस वास्ते गायों की रक्षा करो सब तरह से, तन से, मन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार कोई बुला दो अधिकार से गायों की रक्षा करो। गाय वो विश्व से मात्र संसार मात्र की माँ है। गौ काटने वाले को भी गौ जो दूध देती है, सेवा करने वाले को दूध देती है, गऊ के पक्षपात नहीं। पृथ्वी जैसे वैसे ही ये दिलीप ने यही कहा है कि मैं कर लेता हूं, प्रजा के घर में अनाज आ जाता तो षष्ठा से मुद्दा है रक्षित आया, छठा ऐसा लेता हूं, पांच हिस्सा तो उग्र सका छठा ऐसा, ऐसे दूध का भी छठा ऐसा कह लूंगा। बहुत खुश हो अब रघु बालक को आज वाद के दशरथ जी, दशरथ जी राम जी पैदा हो गए, राम जी ने अवतार लिया। तो अपने कर्तव्य का पालन करना कितनी विलक्षण बात है। सकाम भाव है ये पुत्र के लिए करता है, सकाम भाव, और निष्काम भाव और भक्ति करे भजन पर तो कहना ही क्या है। उसमें भी ये तत्परता से जो कर्तव्य है उस अस्तित्व से पालन कर रहा। भाई और बहन आप अपने अपने कर्तव्य का पालन करें तो क्या है ये पाठशाला, मैंने कहा ना पाठशाला है। इस पाठशाला में वो है ग्रस्त है, वो आपकी परीक्षालय है वो, और यहाँ पढ़ाई है। यहाँ की बातें से करके हासिल में लावे और कृष्ण में अनुकूलता प्रतिकूलता तरह तरह के वहां पर अपनी परीक्षा दे, कम फेल हुए कैसे हुए। तत्काल ये कृष्णों के लिए खास बात है, साधु नहीं हो सकते ऐसे, ऐसे कृष्ण हो सकते हैं। कृष्णों के प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आवेदन कहां जाएंगे, पर साधुओं के तो ठीक बात है, भिक्षा ही ठीक नहीं मिली, अरे भाई स्नान करने की जगह ठीक ना हो, कपड़ा सुखने की तरी ना हो तो चलो खाया रखा है। आप लोग सोच नहीं रहो, कृष्ण में प्रतिकूलता और सहते हुए भी कृष्ण का पालन करते हो, भागवतों का पालन करते हो, साधु वृद्ध होते त्यागी होते हैं, कसास रह जाती है पक्के जीवन पे, क्योंकि प्रतिकूलता आती है तो चल दो तभी तू भी उठाई वहां चल दी। और कृष्ण कहाँ जाएंगे, अपने माता पिता स्त्री पुत्र भाई संबंधी भाई भौजाई भतीजे, तो कृष्ण में रहते हुए पक्के हो जाओगे। कृष्ण में समुदाय में रहते हुए भजन करता है उसका एकांत में भजन बहुत अच्छा होगा, परंतु एकांत में भजन करता है वो अगर समुदाय में आ जाए तो भजन ठीक नहीं होगा, वो कायरता रह जाती, कसा रह जाती है। और व्यवहार में रहते हुए जो भजन करता है उसका भजन बनता है बढ़िया, भक्ति में बाधा नहीं होती। इस वास्ते कृष्ण में रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य हो, ध्येय हो, लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति। भाई भोजन करते हो तो शरीर को पोषण देते हो, तो शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, सबको खुराक मिलती है। और आप काम लेते हो केवल हाथों से ही, मन से भी काम लो, खुराक तो लेता है ये। तो भगवान के नाम का जप करो, हाथों से काम करना करो, हाथ काम खराब, और हृदय साथी पे धैले भगवान में लगाओ। कल से कर्म करो विधि नाना, मन रखो जा कृपा निधाना, उसे मर भगवान के नाम का जप किया जाए। और भगवान की प्रजा है, भगवान की आज्ञा है, उन भगवान की प्रजा की भगवान की आज्ञा के अनुसार सेवा करना है। अपने जितनी हो सके उनकी अच्छी से अच्छी करनी सेवा, जैसी आपकी शक्ति है, पास में जो सामान है उसके अनुसार ठीक से करना है। सब सुख पहुंचा देना हाथ की बात नहीं है, परंतु सेवा करना हाथ की बात है। और भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन करना, भगवान के चरणों का सहारा लेना, ये सात बात। भगवान नाम का महात्म चाहता हूं, दुख चाहू, श्रुति नाम प्रभाव, परंतु कली विशेष नहीं आन हो पाऊ। चारों ही युगों में, चारों ही वेदों में नाम की महिमा है, परंतु कली विशेष को समझ कर कली विशेष क्यों नहीं आन, उद्योग उपाय नहीं है। नाम नाम अकाल बहुधा मेरे सर्वशक्ति नियमित स्मर काल चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भगवान ने कलयुग आता देखा तो अपने साधनों की शक्ति सब की सब नाम में रख दी, और जपने के लिए सुबह शाम दिन में दोपहर कभी जपो, नियमित स्मर न काल, काल वादा नहीं। एकादशी था कृपा, कैसी आपकी कृपा है।